मपि सचेकुत्थमत्रा स्वरूपं रूपं तस्यातुजवरिपुरीं माथुरीं गोष्ठवासिं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रकृतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे सिंह दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरि। हा देवी काकुभर गदगदयाद्यवाच जाचे निपत्त भुवि दंडवत उद्भटरति आशाप्रसादमबुदस्य जनस्य कृत्वा हर्विके तव गणी गण अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जट्यञ्जावद्रोति संविदधतङ्गपट्टम्बरस्य बृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्पन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन्दाम् भावहीनाय पराधलक्षे सेत्वास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना विन्दे नमस्ते चरणा। वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वैराग्यजुगभक्तिरसंप्रयत्ने अपाजन्मानुभेत्यनन्दम् कृपाम्बुधिर्जा परदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रयाय श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददासि सुपतन्त्रितं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तं मे तया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं निमानतु तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणं। श्लोका पाठ कर रहे थे ही ना, गोपियां सम्मिलित होकर के अपने स्वजातीय भाव से युक्त सखियों से अपने मन के भाव को प्रकाश कर रहे। पिछले श्लोक में हंताय अद्रबला में है पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदा, ये उसका पहला श्लोक। ये सभी कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, कृष्ण से मिलना चाहती हैं, उनको स्पर्श करना चाहती हैं, सोचती हैं ये हम लोगों के लिए संभव पर नहीं। ये भक्ति या प्रेम ये अनुगत्य की चीज है, बिना किसी वैष्णव की कृपा से अनुगत्य से बिना गुरु जी की कृपा से ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। श्री गुरु चरण पद्म केवल भकति सद्म बंदमयी सावधान मने
मते
कखन मने हो की अर्थ की मते हले मते का अर्थ क्या हो मतलब कोई बात तो होना चाहिए
सावधानी मोती सही वंदना
सावधान मते तो बोल छो मते माने
मते माने एई रूप सावधान एई रूप
কোন শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে মনটাই আসবে সাবধান ভজনটা তো মন থেকে হবে না কিসে হবে মতে আছে
আপনার গুরু মায়ের সময় গৌড়ে যদি কিছু এরকম আছে আপনার ওখান থেকে দাদা
মতে
হলে ওইটা মনেই হবে সাবধান আচ্ছা উপরে কি আছে সাবধান
মতে
শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকতি স্বপ্ন বন্ধময়ী সাবধান মতে তারপরে
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হয়
ওইটা লাগাইবার জন্য ওটা বলে দিয়েছেন মতি মানে মন মনি মতিও মানে মন শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকতি স্বপ্ন স্বপ্ন মানে
आश्रय
घर जहाँ पर कोई आदमी आश्रय लेता है उसको कहते हैं सदमा ये भक्ति का सदमा आश्रय है गुरु जी का श्री गुरु चरण पद केवल गुरु नहीं कहा श्री श्री माने जो कृष्ण की भक्ति रूपी श्री है इससे युक्त जो गुरु हैं विशेष करके प्रेमा भक्ति जिसके हृदय में है ऐसे श्री से जो युक्त गुरुदेव जी हैं वो चरण कमल उनके भक्ति का स्वप्न है भक्ति का आश्रय है घर वहीं से ये आता है तो गुरु जी के चरणों में जिसकी ऐसी भक्ति नहीं हुई सेवा की भावना नहीं हुई उनके प्रति शरणागति नहीं हुई तो ये वैष्णव वंदना में कहते हैं छय गौतमी वैष्णव ठाकुर दया रसा कर ये दासे करुणा करी दिया पद छया सुधा है हमारे
तुम्हारे चरण धरी
छय दे गौतमी छय दोष सुधी छय
छय गुण देह
दास
छय छत संग देह है हमारे
कृष्ण से तुम्हार
कृष्ण दीते पार
कृष्ण दीते पार तुम्हार शपथ याची
আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই দেব পাচ্ছি পাচ্ছি
তো বিনা বৈষ্ণব কি আর গুরু কি গুরু ভি বৈষ্ণব হ্যাঁ বৈষ্ণব মে প্রধান হ্যাঁ ইসলিয়ে জব তক ইনকি কৃপা নহি হোগি তব তক কভি ভি ভক্তি নহি হোগি আর কৃষ্ণ কে দর্শন কা সুযোগ নহি হোগা ইসলিয়ে ইহাঁ পর হন্তায় মদ্র বলা হরিদাস বরজো यहाँ पर वो करिए सखी हम लोगों की वासना कृष्ण से मिलने की है बहुत दिनों से हमारे पैर हैं कि तू हम लोग जा नहीं सकते आंखें तो हैं देख नहीं सकती अंग है किंतु स्पर्श नहीं कर सकती हाथ इत्यादि है ये सब रहते हुए हम विवश हैं उनके दर्शन नहीं करने के लिए दर्शन नहीं कर सकते पहले बतला हिरण्य धन्य है बादल धन्य है और सब धन्य है जो कृष्ण को स्पर्श कर सकते हैं उनकी सब प्रकार से सेवा कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते ये जो निकट में गिरिराज है ये हरिदास वर्य है हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ है ये गुरु तत्व है यदि हम इनके शरणागत हैं इनके पास जाएं, इनकी पूजा करें इनकी सेवा करें तो वो जैसे कृष्ण की सेवा करते हैं हम लोगों को भी ऐसा सुयोग दे दें गुरु यदि उस कोटि का है जो कृष्ण की सेवा करते हैं निकुंज यूनो रति के लिए सिद्ध है अथवा साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्रे रुक्तस तथा भाव्यतये वसद्री किंतु प्रभुर्यो प्रियो भगवान का प्रिय हो ऐसा गुरु प्रिय तो जीव मात्र उनके हैं, किंतु जिनके प्रेम के वशीभूत हों, ऐसे गुरुदेव यदि हों, ऐसे कोई भक्त हों, तो उनकी कृपा से, उनकी सेवा से, इच्छा से कृष्ण ऐसे मिल सकते हैं, अन्यथा मिलेंगे नहीं। इसलिए एक बात करें, हम लोग मानसी गंगा में स्नान करने के बहाने चले, वहीं पर पास ही में हरिदेव जी हैं। यदि गोवर्धन की सारी परिक्रमा कर ली जाए और हरिदेव का दर्शन नहीं किया जाए तो परिक्रमा विफल मानी जाती है, उसका सफल नहीं होता। तो कह रहे हैं कि हम लोग हरिदास जी का तंका, हरिदेव जी का दर्शन करने के लिए चले, और कहीं नहीं जैसे हम लोग मानसी गंगा में स्नान करके हरिदेव जी का दर्शन करके अभी आ रहे हैं, अच्छा बहाना है, और गिरिराज जी के वहां हम जाएंगे और हमारा मनोरथ भी जरूर पूर्ण हो जाएगा। कैसे पूर्ण होगा? वो पर्वत के ऊपर में ही गिरिराज पर कहीं न कहीं गोचारण करते हुए अपने सखाओं के साथ में जरूर खेल रहे हैं। एक साथ कितना काम हो गया, बहुत से काम हो गए। मनसी गंगा का स्नान सहज ही हो गया और साथ साथ में हरिदेव जी का भी दर्शन हो गया, गिरिराज जी का भी पूजा, उनकी पूजा कर लेंगे। गिरिराज मनसी गंगा में स्नान करके वहीं पर पहले गिरिराज जी की पूजा कर लेंगे और फिर वहीं पर पास में उस ऊपर में हम उनका भी, हरिदेव जी का भी दर्शन कर लेंगे। किंतु ये सब कुछ है कि इसलिए एकमात्र उनका दर्शन स्पर्शन भाषण कृष्ण के साथ,
कृष्ण दर्शन लाभ।
इसलिए कृष्ण दर्शन और उनसे साथ में स्पर्शन और उनके साथ में मिलना जुलना, यही उनका मूल उद्देश्य है। हम लोग के जीवन में भी ऐसा ही मूल उद्देश्य होगा, कृष्ण से मिलना, कृष्ण की सेवा को प्राप्ति करना, उसके लिए ये सब साधन है। यद्यपि भक्ति के साधन और साध्य दोनों एक है, श्रवण, ये श्रवण है ना, अभी हम लोग क्या श्रवण करेंगे, भगवत तत्व, विशेष करके माया तत्व हम लोग अच्छी तरह से समझें। अभी जिस चीज को हम देख रहे हैं उसमें आसक्त हो रहे हैं, ये माया के द्वारा हमारा कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं होगा, इसके द्वारा दुख ही दुख होगा। गुरु के चरणों में इसलिए आए हैं ये साधन। अब तक हम अपने मन के अनुसार में चल रहे थे, मन जैसा परामर्श देता था ना, वैसा अब तक हम लोग चलते थे। अब से हम आज से क्या करेंगे, गुरु जी के यहाँ वो स्वतंत्रता को गुरु जी के चरणों में बेच दे, अब अपने मन को खाली कर दे, पूरा खाली। अब खाली करके क्या करेंगे, गुरु जी का आदेश उसमें भरते जाएंगे और वैसे ही हम आचरण करके चलेंगे। जो व्यक्ति मान ले कि पहले आया आश्रम में या शिष्य हुआ मठ का, उस समय तो अपनी स्वतंत्रता सचमुच में छोड़ देता है, अपने मन के अनुसार में नहीं चल करके जैसा वो कहते हैं सुखो दुखो बड़े आनंद से चलता है। जैसे अब तो कृष्ण को पा लिया, खूब करता है, खूब उत्साह के साथ, उसमें भक्ति उत्साहमयी होती है ने? किंतु कुछ दिनों के बाद में वो घन तरला हो जाती है, घन तरला मने वो अब उसमें रुचि अब कम लगती है, कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं, खूब सेवा कर रहे थे और जैसा कर रहे थे वो कर रहे थे हम लोग, किंतु दृश्यमान के रूप में प्रत्यक्ष रूप में कुछ देखने को मिला नहीं। जे क्या भक्ति है, न कृष्ण ही दिखलाई पड़े, न कोई आश्चर्यजनक कोई घटना भी नहीं हुई, इसलिए मन खराब हो जाता है। अब अपना मन जो गुरु के यहाँ दिया था वैष्णव के यहाँ, वहां से लौटा है, अब कैसा करते हैं, जैसा मन कहता है वैसा करते हैं, अब गुरु जी के अनुसार नहीं। अब विचार करके देखो अपने में सब, यदि ऐसा नहीं आया तो बहुत ठीक है, हम गुरु और वैष्णव जिनके साथ में, या हमारे प्राचीन आचार्य लोग हैं भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद, गुरु परम गुरुदेव और सब लोग हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनके मन में हमने अपने मन को मिलाया कि नहीं? भक्त विनोद ठाकुर जी कहते हैं,
तुम्हार
इच्छाएं मोर इच्छाएं मिसाई लो। अब अपना हम मन अलग न रखे, अब अपना मन यदि अलग रखा तो माया पकड़ ली। यदि हम लोगों ने अपना मन नहीं रखा, अपना विचार सब कुछ निकाल करके उनके ऊपर में छोड़ दिया, जैसा रखेंगे वैसा करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, उनका आदेश पालन में ही अपनी सारी बुद्धि को लगाएं, तब तो होगा। और नहीं तो भक्ति स्वतंत्र वृत्ति है, चिन्मयी वृत्ति है, वो सहज ही नहीं आएगी। जब तक देखेंगे ऐसा नहीं हुआ, नहीं। इसलिए खूब सावधानी से गोपियां कह रही हैं, हंता अर्थात हे सखी, ये हम लोगों के हजार चेष्टा करने से कृष्ण के प्रति जो प्रतिबंधक हमारे लिए हैं वो नहीं हटेंगे। कैसे हटेंगे? गुरुजनों का भय है और सब विघ्न बाधाएं हैं, वर्णाश्रम धर्म है, ये सब हटेंगे नहीं। यदि गिरिराज जी की कृपा हो जाए ना तो हो जाए, अभी साधन की अवस्था में गिरिराज जी की कृपा हो जाए, हम लोग गिरिराज जी का बहाना करके जाएंगे, गिरिराज जी को जा रहे हैं, हरिदेव जी मिलेंगे, मानसिंह नगर स्नान करेंगे, हेलो राधा विनोद बिहारी की, सचिन नंदन गौर हरी की जय। क्या कह रहा है? तो गिरिराज जी की कृपा होने से ये हो जाएगा। इसलिए सब समय भाई किसी भी स्थिति में अनुगत्य वैष्णव का नहीं छोड़ेंगे, जैसी भी परिस्थिति हो जाए, मन जितना भी भड़काए, जो कुछ भी करे, संग नहीं छोड़ेंगे, पहला नंबर है। और उनके इच्छा के अनुसार में हम चलेंगे उनकी सेवा में, तब तो भजन राज में उत्तरोत्तर हम लोग ऊपर जा सकते। अब मन की जहां सुनना सीखा, मन की बात सुनने लगे तो बस एकदम रसातल में चले। मन क्या चीज बतलाएगा, कहेगा वो यही कहेगा, जैसे ये देखो शरीर को ठीक रखो, बेकार का ये क्यों इतना करोगे, आराम से रहो, आराम से रहो, यही शिक्षा दे। और जैसे सुख प्राप्त हो सके सहज सहज रूप में, बस ऐसा चलो, मन ऐसा ही कहेगा और ऐसा कराएगा जो विषयों में एक दिन फंसा करके चुप था। इसलिए उसकी बात नहीं मानना, मानना है गुरु जी की बात, वैष्णवों की बात मानना है, शास्त्रों की बात मानना। इसलिए हंता है अग्र अबला, हम लोग अबला हैं। अबला की व्याख्या उस दिन की, साधु संघ का बल नहीं, साधुओं के संघ में रह करके भी साधुओं में उतनी अनुरक्ति नहीं है, रहते हैं मठ में किंतु कभी किसी से बातचीत नहीं करते हैं, तो क्या होगा, किसी वैष्णव के प्रति गुरु के प्रति वैसी प्रीति ही नहीं है, तो क्या होगा, मठ में रह करके क्या हुआ, तो वो निर्जन में ही रहना हो गया। इसलिए ऐसा नहीं, प्रतिपूर्वक उनसे संबंध होकर के उनसे बातें हो, चीतें हो, सुनेंगे, प्रश्न करेंगे, आदान प्रदान भावों का होगा, लेना देना सब विषय में तब। इसलिए हम अबल हैं, अबला बल नहीं है, परमार्थी वैष्णव का संग नहीं, इसलिए हम बलहीन हैं। पारमार्थिक बल साधन का बल जैसा, अभी हम लोग सवेरे इसके संबंध में चर्चा कर रहे थे, प्राचीनानां भजन अतुलं श्रीमतां दुष्करोमि नैराश्येन जलति हृदयं भक्ति लेशालसस्य विश्वदरीचि अगर तवाकर्ण कारुण्य बीचि आशा बिंदु क्षेपन इदं अंतरे हंत सत्संग करें। प्राचीन गुणों का, वैष्णवों का भजन जब देखते हैं ना, कैसा भजन किए, साधारण रूप में एक कश्यप ऋषि और अदिति कितने हजार वर्ष तक भजन किया, और वो खाना पीना छोड़ करके हजारों वर्ष, यहाँ तक कि हवा को भी छोड़ दिया और अंगूठे के बल पर सिर को, पैर को ऊपर कर दिया, धड़ को अलग कर दिया ऊपर और अंगूठे के बल नीचे ऐसे खड़ी हो और वो खड़े हो, हवा तवा कुछ नहीं लिया, पानी नहीं लिया, खाना नहीं लिया, भोजन नहीं किया, 60,000 वर्ष बीत गए। आए नारायण जी, बोले जैसे बर मांगो, इतना कठोर तपस्या है, पर ये आपका जैसा पुत्र बनता तो हमारा जैसा पुत्र तो अब कहीं मिलेगा नहीं, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र को आऊंगा। तो उन्होंने कहा जे तीन बार, आप ही के जैसा हमें पुत्र, आप ही के जैसा हो और आप ही के जैसा हमारा पुत्र, इसलिए तीन जन्मों के लिए उनको कह दिया, तीन जन्म में उनके पुत्र हो। कितनी कठोर तपस्या। हिरण्यकश्यपु सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की। ध्रुव जी ने भगवान के लिए अपने राज्य पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की। नारद जी ने कितनी कठोर तपस्या की है, ये सब देखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं और खूब आनंद के साथ में सारा दिन हंसते और बातचीत करते, दिल्लगी करते, बस इसी में निकल जाता है। और परस्पर परस्पर लड़ाई झगड़ा में थोड़ा सा हरिनाम कर लेते हैं, और ऐसे भजन से नहीं होगा भाई। ये प्रेम ऐसी चीज नहीं, अनायासी संसारों से आसक्ति कभी दूर हो सकती है, भव बंधन किसी कारण से कट सकता है, ये इतना होगा, किंतु ये दुर्लभ प्रेम जो बतला रहे हैं ये नहीं होगा। उसके लिए खूब उत्सुकता होनी चाहिए, आग्रह होना चाहिए, उत्कंठा। बिना उत्कंठा का भजन, वो भजन ही नहीं है जिसमें उत्कंठा नहीं है, कैसे मिलेंगे और कितना सब तमों का तो जीवन चल ही रहा है, भगवान किस लिए मिलेंगे। नारद जी को दर्शन दिया और क्षण मात्र में फिर ओझल हो गए। आप किस लिए ओझल हो गए, नारद जी खूब रोने लगे। अभी तुम्हारे अंदर में उतनी उत्कंठा नहीं थी, इसलिए एक बार झलक देकर के तुम सारी उत्कंठा को वर्धन करने के लिए, तीव्र करने के लिए मैं उछल हो गया। अब इस शरीर से नहीं मिलूंगा। अब देखें तुम्हारी उत्कंठता, उत्कंठा यदि एकदम तीव्र हो जाएगी, शरीर अपने आप ये छूट जाएगा और तब तुम सदा के लिए हमको पा जाओगे, सब समय तुम्हारी दृष्टि के में रहूंगा। ऐसा तो भजन है नहीं हम लोगों का, इसलिए निराशा से हृदय जल रहा है, अब हमको कभी नहीं मिलेंगे। बस एक केवल आशा है, ये आपकी करुणा की बरसात सर्वत्र हो रही है विश्व में। उस विश्व में करुणा की जो वर्षा हो रही है, या समुद्र में जैसे लहरें आ रही हैं सर्वत्र, तो कहीं यदि किनारे से टकराई, उसकी एक बूंद यदि कहीं पर छींटे पड़ गए, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। बस यही एक आशा है जो कभी न कभी मिल जाए, बस इसी का। तो इतना कठोर भजन करके बिना खाए पिए, दिन रात बिना सोए, निद्रा नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों को देखो, सनातन गोस्वामी जी रजाई इसलिए नहीं लेते थे कि कहीं नींद ना आ जाए, कोई दे दिया ना तो कहते थे इसको जला दो। और हम लोग देखो, इसलिए उनका भजन कितना। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है यदि इस जन्म नहीं, यदि वैष्णव का संग मिल गया, उसके अनुगत्य में हम रहें और उसके अनुसार अपने को ढाल करके हम चलें, तो एक न एक दिन उनकी कृपा मिलेगी। इसलिए कहते हैं हम काय अद्रबला हरिदास, हम लोग अबला, अबल के ऊपर में, अबला के ऊपर गोपियां करेंगी, हम अबला हैं, क्योंकि हमारे पैर रहते हुए भी चल नहीं सकती कृष्ण के पास में। लोग हजारों आदमी उंगली दिखलाएंगे, कहाँ जा रही है, अरे तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है, तुमने कुल का, ये कुल का हमारा कलंक लग गया भजन करने में, ऐसे कहें। और लड़कियां या और घर के लोग मदिरा पान करें, सिनेमा घर में जाएं, दूसरों से यारी करें, कोई भी बुरी बात नहीं, और सबको छोड़ करके भगवान का भजन कर लिया तो कुल में कलंक हो गया। कहने वाला कौन, कुल कलंक ही कह सकता है, दूसरा नहीं कहेगा। साधु लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, वाह इसने कुल, ये कुल की प्रदीप या कुल का प्रदीप। पितर लोग जो पितृलोक में है ना, नित्यंती उनके पितामह परमतामह जो कि वैकुंठ वहां है स्वर्गलोक में, या भूर भुआ स्व महाजन इत्यादि महर्षि लोक इत्यादि में पितृलोक में है, वहीं से सुन करके नित्य करेंगे। क्यों नित्य करें? आज हमारे वंश में एक भक्त पैदा हो गया या हो गई, और मूर्ख लोग जो हैं, कुल के जो कलंक हैं, वो कलंक समझे के सभी हमारे जैसे ही। गांव में एक लड़का पैदा हुआ, सारे गांव के लोग मदिरा पीते थे और वो हुक्का चीलम पीते थे, तो वो लड़का बचपन से ही, जन्म से ही शराब नहीं पीता और वो बीड़ी हुक्का इत्यादि चीलम पीलम कुछ नहीं लेता। गांव में कहा जैसे ये लड़का, ये तो हमारे कुल में कलंक लगाने वाला था। वो जन्म होने के थोड़ी देर के बाद में वो ले गए शराब, उस समय तो शराब होठों पर लगा देंगे, मल देंगे, अंततः इसी समय से अभ्यास उसका। तो वो लगाने गए तो वो लड़का ऐसे ऐसे करने लगा, वो लगाने ही नहीं दिया। अभी इसको क्या हो गया, ये इसको तो रोग लग गया कोई, या इसको डाकनी पिशाची नहीं लग गई। कुछ दिनों के बाद में उसको हुक्का गुड़गुड़ी दिया तो वो एकदम ले ही नहीं, कहा जैसे ये जरूर कुछ है, डाकनी हाकनी या भूत या पिशाच लग गया है। ये हमारे कुल में तो ये कलंक ये जन्म गया, ऐसा तो कभी नहीं देखा गया। तो वो जितने बदमाश है ऐसा कहें, और कोई साधु पुरुष वहां होता तो क्या कहता, वाह ये वंश में एक ही ये लड़का जन्म लिया या लड़की जन्म लिया। इसलिए कहते हैं अबला, हम लोग अबल, परमार्थ का बल नहीं, भजन का बल नहीं, साधु संघ का बल नहीं, उधर रुचि ही नहीं हो रही है। थोड़ी सी रुचि जरूर है, आए हैं, किंतु अभी उसका हम सब व्यवहार अभी करने में अक्षम है। हरिदास बतलाया था जो तीन हैं, युधिष्ठिर महाराज और उद्धव जी और नारद जी भी हैं, हरिदास ही हैं, ये सब हरिदास हैं। उन लोगों में से युधिष्ठिर महाराज जी को इसलिए हरिदास वर्ज्य कहा, इसलिए नारद जी ने ही कहा आप हरिदास वर्ज्य हैं, नहीं हरिदास, हरिदास युधिष्ठिर महाराज। आज कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ में आपके घर में आते हैं, और जब विश्व के जितने साधु संत आपके घर में आते हैं, किस लिए आते हैं, कृष्ण का दर्शन करने के लिए। किंतु मैं समझता हूं कि वो कृष्ण की महिमा और भक्ति की महिमा नहीं जानते, इसलिए वो कृष्ण का दर्शन करने हम, मैं उस लिए नहीं आया, मैं किस लिए आया, आपके दर्शनों के लिए आए, आपके प्रेम के वशीभूत होकर के कृष्ण यहाँ है। इसलिए हम नारद जी कहते हैं भक्ति तत्व के रसिक वक्ता तो है ना, इसलिए उन्होंने कहा हम आपके दर्शन, आप लोग तो बहुत उन्नत
हैं,
पत भूरी भागा लोकांग पुनानंग मुनु योगिया, मुनि लोग लोक को पवित्र करने वाले होते हैं, वो आपके घर में आते हैं, किस लिए, वो शक्ति को आपसे संचरित कराते हैं, उनमें शक्ति कौन देता है, ये युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ होने पर भी। इसलिए नारद जी जैसे लोग युधिष्ठिर महाराज जी की वंदना करते हैं कि कृष्ण गूढ़ रूप में रहस्य रूप में छिपे हुए हैं आपके घर में, और यहाँ पर मुनि लोग आते हैं और विश्व ब्रह्मांड का उद्धार करते हैं, आप उनमें से एक, क्या क्या हो पूरी महाराज तो भर दिया जा। अच्छा, इसलिए महाराज युधिष्ठिर जी हरिदास बन गए, हरिदास। उद्धव जी क्यों, कृष्ण जिनके, कृष्ण के जो मंत्री हैं, सखा हैं, दास हैं, यहाँ तक कि प्रिय नर्म सखा का काम कुछ कर रहे हैं, भले ही उनको मालूम ना हो, उद्धव जी को नहीं मालूम हो जे मैं क्या लेकर के जा, चिट्ठी लेकर के गए, किंतु चिट्ठी में क्या संदेश है, जिसको उद्धव जी शायद पहले नहीं समझ सकते। जब वहां के विद्यालय में भर्ती हुए, और विद्यालय में भर्ती होकर के जब वहाँ पर पूरी कुछ दिनों तक वहाँ पर सेवा की और समझे, उनका संग किया, तो शायद उसमें से दो एक अक्षर, अढ़ाई अक्षर तो उसमें केवल था, अढ़ाई अक्षर था, किंतु 2.5 अक्षर में समस्त भागवत लिखी गई, इसलिए उसके ले जाने वाले और गोपियों की महिमा समझने वाले होने के कारण ये हरिदास बने। किंतु कृष्ण जब मथुरा में थे ना, उद्धव इनके समवयस्क हैं, उनको बुलाया, अपने सुबल सिद्धाम सखाओं के साथ में इनको भी रखा, देखा जी अभी ये कच्चा आदमी है, अभी इसके लिए योग्य नहीं है, इसलिए उनको दूर रखा। जब वृंदावन में भेजा, उनके पास में रहे, कुछ सुना समझा, तो मथुरा में अपना साथी बना करके अपने भावों का आदान प्रदान किया, बस यही तक। इसलिए हरिदास वर हुए और हरिदास वर्ज्य हुए गिरिराज, इसी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं हम लोग अबला होने पर भी चलो हम लोग गिरिराज गोवर्धन चलें, उनकी सेवा पूजा करें और वहीं पर कृष्ण विचरण कर रहे होंगे, उनको भी हम दर्शन करें। विशेष करके ये कह रहे हैं सनातन गोस्वामी जी, देखो और सब चीज में हमारा बल है, किंतु इतना बल नहीं है अपने हम धैर्य को, धैर्य है ना, धैर्य को, धैर्य क्या है, कृष्ण को दर्शन करने में बाधा देता है धैर्य। हम घर में बैठी हैं या बैठे हैं, हम धैर्य धारण करके रह सकते हैं, कोई विपत्ति आई हम धैर्य धारण करके रखते हैं, कोई कष्ट है हम लोग धैर्य धारण करके रहते हैं, इंजेक्शन लगा रहा है कोई, जरा मोटा इंजेक्शन है, पहले देख करके आंख बंद कर लेते हैं इसमें कष्ट होगा, किंतु देखते हैं कि यदि इंजेक्शन नहीं लगाया तो रोग बढ़ जाएगा और बड़ा भारी मुश्किल हो जाएगा, रोज रोज कष्ट सहना पड़े, इसलिए थोड़ा सा कष्ट सह ले, इसलिए उसके देने के पहले ही ऐसे कर दिया है, कहे जरा शरीर हल्का ढीला करो, ऐसा कर जो से बना लिया ना, तो वो इसको कहते हैं धैर्य। यदि धैर्य यदि छोड़ दे तो क्या होगा, सब बिगड़ जाएगा काम। अब गोपियां घर में बैठी हैं, सुना जे कृष्ण गोचारण करने के लिए गए हैं ना, अब इनको ये धैर्य है, धैर्य का जाना उचित नहीं है, यदि जाएंगे तो हमारी सास सासुड़ी और गांव के लोग सब लोग हमारी निंदा करेंगे, अब ये धैर्य धारण करना है, तो ये धैर्य जो हमारा छूटता नहीं, लोक लज्जा का जो भय है वो छोड़ता नहीं। कृष्ण दर्शन में यदि ये बातें रहेगी, लोक लज्जा धर्म भय गुरुजनों का भय और संसारिक लोगों का कहने का भय, जो ये क्या कहेंगे, माता पिता को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके, नौकरी चाकरी छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, अपने पत्नी को छोड़ करके, और ये चला गया भजन करने के, ये तो बड़ी भारी लोक लज्जा होगी, हमारे वंश में आज तक ऐसा हुआ नहीं, इसने कर दिया, कितना तरह से लोग समझे। इसलिए हम अबला है कि अपने धैर्य को नहीं छोड़ पाती, नहीं तो आज यदि धैर्य छोड़ दिया होता, लोक लज्जा इत्यादि का श्रृंखल यदि तोड़ दिया होता, धर्म का भय यदि छोड़ दिया होता, जो जो कुछ होना का है, अरे नरक ही तो होगा और क्या होगा, इससे हो नरक कोई बात, अच्छे घर से निकाल ही तो देंगे कोई बात, यदि ये बात हो जाती तो नहीं? इस तरह से सब का जब छोड़ दिया तब हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम अबला है न बल, यदि इसको छोड़ देती तो आज ही कृष्ण मिल जाते, लोग जो कुछ कहना है सो कहते हैं, इसलिए कहते हैं, इसलिए हम कृष्ण के चरणों में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। अभी हम लोगों के कृष्ण भजन का अंतराय भी यही है, विघ्न बाधा भी यही है, आलस्य है, शरीर का सुख का हम विचार करते हैं, रात में जगेंगे शरीर खराब हो जाए, हरिनाम पूरा करेंगे शरीर अलाउ नहीं करता, और शारीरिक ये सब है, सामाजिक कुछ चीजें हैं जो गृहस्थ हैं उनमें सामाजिक कुछ है, इस तरह से सब ये विघ्न बाधा है कृष्ण भजन के। जब सुखदेव गोस्वामी की तरफ में जन्म हुआ और बस चले गए, बाप चिल्लाता रहा, बेटा बेटा, उसने उत्तर नहीं दिया, सुखदेव गोस्वामी उत्तर कौन दिया, बन के में जो प्रतिध्वनि हुई बेटा, उन्होंने कहा तो जोर से सब बेटा करते हुए वन जंगल में उसकी प्रतिध्वनि ऐसी गूंजी जब वो 4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 8 घंटा तक वो इस तरह से वो पूछ गई। ऐसे उन्होंने दो एक बार चिल्लाया, दो एक बार ऐसे ही उत्तर दिया, उनके कान तक वो पहुंची नहीं आवाज, लोक लज्जा सब छोड़ दिया। कृष्ण भजन में आज या कल ऐसा ही होगा या परसों, भले ही अभी नहीं हो रहा है कि एक दिन ऐसा ही होगा, इस जन्म में या उस जन्म में वो उस जन्म ऐसी तीव्र उत्कंठा होगी और उस समय ये सब अबला का भाव दूर हो जाएगा। हम लोग तो छोड़ने किंतु छोड़ना चाहती हैं तो कैसे ये बल मिलेगा, उसी के लिए गोवर्धन पर्वत पर हम चले। और क्योंकि ये हरिदास श्रेष्ठ है, क्यों हरिदास जी ऐसे हैं कि केवल कृष्ण का सम्मान ही नहीं करते, मानव तनोति सह गो गणयोस्तयोर, जत कृष्ण के जितने परिकर हैं पहले उनकी सेवा करते हैं, गायों को स्वच्छ निर्मल सुगंधित जल पिलाते हैं, कृष्ण के चरणों को पखारने के लिए ये सब जल है, पीने के लिए स्वच्छ जल है। आज का हमारा जैसा अनुमान है किसी भी पोखरे में किसी भी नदी में आप जाएं पानी नहीं पी सकते, चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो चाहे कोई नदी, किस लिए नहीं पी सकते, चारों तरफ इतना प्रदूषण हो गया है जो पानी पी नहीं सकते। आचमन करने में भी यमुना का पानी भलक, उसमें स्नान करने से उसमें जो परमाणु गंदे हैं उसमें ये सब रोग हो सकते हैं शरीर में भी, और पीने से भीतर में जाकर तो न जाने क्या कर। ऐसी कोई भारतवर्ष में कोई नदी नहीं है जिसमें पानी पिया जा सकता है, ऐसा कोई सरोवर नहीं है स्वच्छ निर्मल पानी। हमने अपने जीवन में बचपन में हमने देखा है लोग बंगाल में सब सरोवर का पानी पीते थे, बंगाल में कोई कुआं नाम का कोई चीज ही नहीं था, नो हैंडपंप था, गांव में ढूंढ करके कहां सरोवर है, गांव के बाहर स्वच्छ जल है लिया। जमुना में उस समय लोग, हम लोग जब आए जमुना का पानी आज से 50 वर्ष पहले कितना निर्मल था आप लोग अभी कल्पना नहीं कर सकते। उस समय वहां से पानी ले आकर के यहाँ पर दाल रसोई होती थी और उस समय सभी लोग उसी पानी से ठाकुर जी का आर्चन करते और हम लोग पीते थे। आज न दाल बन सकती है उससे, न कोई काम ही हो सकता है। तो ये गिरिराज गोवर्धन में अभी भी मानसी गंगा में जाइए, कुसुम सरोवर में जाइए, पानी पी सकते हैं वहां, इतने बड़े बड़े गोल गोल सब अंडे जैसे पड़े हुए, गंध कितना है, काई लगी हुई है, पिया नहीं जा सकता। और उस समय कृष्ण के समय में कितना निर्मल होगा, जब 50-60 वर्ष पहले की बात मैं कहता हूं, कितना सुन। अभी एक परिक्रमा मार्ग में एक सरोवर पड़ता है, आप लोग देखें सुरभि कुंड, उसका जाने मुख में पानी देने से इच्छा करते ही पी ले, साफ तो नहीं है किंतु मीठा अंतत है और उसमें काई टाई कभी नहीं रहती है। और तो जरा दूर है नारद मुनि का भी हो सकता है, तो पहले ऐसा था। तो पानी से सबका मान करते हैं, मान माने सम्मान करते हैं, केवल कृष्ण का नहीं कृष्ण के साथियों का, गुरु की सेवा तो सभी करते हैं किंतु गुरु सेवकों का यदि आदर कर सके तो ये बड़ी सेवा होगी, उससे गुरुदेव प्रसन्न होंगे। कृष्ण की सभी सेवा करते हैं किंतु कृष्ण के जो सेवक और सेविका हैं उनकी यदि कोई सेवा करके प्रसन्न कर देंगे तो कृष्ण की सेवा करने की वो अपने आप प्रसन्न हो जाए। उसी तरह से ये कर रहे हैं हरिदास वर्ज, वो पानी देते हैं और क्या, पानी सुवयवस सुंदर कोमल घास, बछड़ों को क्या चाहिए, जहां हरी घास देता कृष्ण को भी भूल जाएंगे। गिरिराज गोवर्धन सुंदर सुंदर कोमल और हरित तृण उनके लिए दे देते, गाय चर करके आघा जाती हैं और उसके बदले में अपना दूध एकदम थनों में भर लेती है। पागल किया कुछ क्षण, सवेरे तक एकदम उनके थन फटने लगते हैं, यदि न दुहा जाए तो वो डकार में लगती है। तो ऐसे ये इनकी सेवा, कृष्ण उसी का पान करें। और सखाओं के लिए भी वैसा ही पानी देते हैं, फल देते हैं, केला, लेबू, अनार, ऐसा कोई फल ही नहीं है जो नहीं, जिसको बच्चे देकर के आनंद से भर जाते हैं। नारियल का, नारियल और ताल, बड़ा सुगंधी, नारियल के फल में उतना गंध नहीं होता है, सुगंध नहीं होगी, किंतु ताल वृक्ष जहां पका ऊपर में पीला नीचे काला हुआ, एकदम चारों तरफ सुगंध फैलने लगता है, बच्चों के मुख से पानी निकलने लगता है उस फल को देखकर। ऐसे फल कटहल है, तरह तरह के फल, ऐसा कोई नहीं है जो ब्रज में नहीं है और गिरिराज गोवर्धन में नहीं है, इन फलों को दे देते हैं। मानम तनु सहगो गणयस्तयोर जब पानीषु यवस कंदर, कंदर देते हैं, कंदरा सखा लोग गोचार में करते करते कुछ थक गए, कुछ आराम करेंगे ना, तो रत्न वेदी दे दिया, सब बच्चे उस रत्न वेदी के ऊपर में बैठे और ऐसा बनाया, गर्मी में ठंडा, गर्मी में ठंडा सुशीतल और ठंडे के दिनों में पहाड़ ऐसा होता है गर्मी के दिनों में तप जाएगा और ठंडे के दिन में इतना ठंड हो जाएगा जब उस पर हाथ नहीं रखा जाए, किंतु इनका ठीक विपरीत कृष्ण के लिए। और रत्न वेदी और रत्न सैया देते हैं लंबे लंबे, गिरिराज गोवर्धन ने पहले ये सब था, लंबे लंबे खूब सुंदर और ऐसे कोमल हो जाते थे, विशेष करके कृष्ण की बंसी बजने से अत्यंत वो अपने आप कोमल हो जाते, इस पर ये लोग शयन करते। विशेष करके कंदरा, एक कंदर, एक कंदरा, कंदरा में किस लिए, विशेष करके अपने लिए ये कह नहीं रही है किंतु शब्द कह रहा है, कंदराओं में सुंदर सुंदर सब कुंज बने हुए हैं, उसमें मणि मणि के दर्पण है, अपना प्रतिबिंब उसमें देखा जाए, सब श्रृंगार की वस्तुएं वहां पर अपने आप वहां पर गिरिराज में है, इस तरह से गोपियों और कृष्ण के मिलन का स्थल बन जाता है। इस तरह से सब प्रकार से सेवा करते हैं गिरिराज गोवर्धन जी, इसलिए कहते हैं रसनधि नव जूनो साक्षिणी दान के लिए दूत परमल विद्धां श्याम वेदिं प्रकाश्य रसिक बर कुलानां मोदयन आलयन में निज निकट निवासं देहि गोवर्धन। रसनिधि नव जूनो मैंने राधा कृष्ण या रसनिधि है, नव जूनो दान के लिए साक्षिणी, साक्षी है दान के केली की, कौन जहां पर हम लोग जाते हैं दान घाटी में या निवर्तन कुंड में, दान निवर्तन कुंड में, इन दोनों में एक है कृष्ण दानी बनते हैं और दूसरे में कौन दानी बनता है, राधा जी विशाखा जी ये सब दानी बन जाते और कृष्ण को दान देना पड़ता, उनसे दान लेती है, दान को लौटा लेने वाली दान निवर्तन, ऐसे सब स्थान है उसके आप साक्षी हैं, दोनों में कैसी बातें हुई, निकुंज यूनो रति के इत्यादि, तो इसके आप साक्षी हैं, इसलिए आप हमको उस कुंड में स्थान दीजिए जिसे कि मैं भी उन लीलाओं का दर्शन कर सकूं, हमारे धर्म लीला की स्फूर्ति। हम लोग तो गोपियों का भाषण है, गोपियों का ऐसा ये बात है, साधक जी का करेगा, साधक जी इनको सुन करके उसके अंदर में ऐसी उत्कंठा होगी, हमारा कब ऐसा दिन होगा, सचमुच हमारा कभी ऐसा दिन होगा जब गोपियों के इन भावों के लिए हम गोवर्धन जाएंगे तो ऐसे ही भावना हमारी होगी, उन्हीं चीजों को दर्शन करने की लालसा होगी, कहां पर यह दान भट्ट हुई था, कहां पर उन्हें ये सब बातें कैसे कैसे हुई थी, सुन करके हृदय में लोभ और लालसा बढ़ेगी उस चीज की। भजन का अंतिम बिंदु यही है, यदि किसी का इस जन्म में मनुष्य जन्म में अंततः ये फिर हो गया एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ और एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द भजन, भजन का हमारा तात्पर्य क्या है, उसका हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं भजन में, और ऐसे लोग जो कि हमको दे सकते हैं उनके चरणों तक यदि हम पहुंच जाएं और अपना सर्वस्व उनके चरणों में नौछावर कर दें यदि हम, तो ये हो सकता है, इसी के लिए गिरिराज गोवर्धन। इसलिए गोवर्धन हम लोग जाएंगे कि ऐसी भावनाएं लेकर के जिससे कि हमारी मन की आशा आज इन कर वंचा कल्पतरु भ्यश्च पतितानां पावनं कतना
फ्रॉम टुमारो यू कैन स्टार्ट अगेन यू कैन स्टार्ट इट अगेन फ्रॉम टुमारो.